I've been talking about how to renew your spiritual strength.
देखिए चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे अपने अंदरूनी सामर्थ्य को अब नया कर सकते हैं.
Today I'm dealing with the third part of my message.
और आज अपने संदेश के तीसरे भाग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं.
So I want you to go and access the first and the second part to really bless you.
तो चाहते हैं कि पहले और दूसरे भाग पर भी आप गौर करिएगा, यकीन ये आपको आशीष पहुंचाएगी.
Turn with me in your Bibles to the book of Psalm 126 and verse 5. Come on.
चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे भजन संहिता का अध्याय 126 उसके पांचवें वचन में.
It says, those who sow in tears shall reap in joy.
वचन में लिखा है कि जो लोग आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं वे जय जयकार करते हुए.
Notice it says sow in tears.
गौर करें आंसू बहाते हुए बीज बोना.
It requires inner spiritual strength to sow in the midst of tears.
और देखिए आपके आत्मिक यानी अंदरूनी सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है आपके आंसुओं के दौर में बीज बोने के लिए.
It requires inner spiritual strength to sow in the midst of what you are going through.
जिस किसी दौर में से आप जा रहे हैं देखिए उसके बीच में भी बीज बोने के लिए आपको अंदरूनी सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है.
Recently a mother wrote to me.
और हाल ही में एक माँ जी ने पासवान जी को
लिखा. Says my son lost his job.
उन्होंने इस तरह से लिखे कि मेरे बेटे ने अपनी नौकरी गंवा दी है.
And it's quite a few months since he's lost his job.
और कुछ महीने हो गए हैं उसकी नौकरी गंवाए हुए.
And the mother was very upset.
और वो माँ बहुत ही निराश थी.
She was asking me what should I do.
और वो इनसे पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए.
I told her that you need to continue doing what you have trusted God for.
पासवान जी ने उन्हें बताया कि जिस बात के लिए परमेश्वर में भरोसा कर रही हैं और जो काम करती आ रही हैं आपको उसे करना जारी रखना है.
You know, it requires inner spiritual strength to pray, to fast, to worship, even when things are not going right.
और देखिए इसके लिए आपके अंदरूनी आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है जब चीजें जो है आपके मुताबिक सही नहीं जा रही हो उस दौर में भी.
You don't see the light at the end of the tunnel, but I tell you, it requires inner spiritual strength to go on in the midst of everything. Come on.
और देखिए सुरंग के उस आखिर में भी देखिए आपको कोई उज्याला दिखता नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी आपको अंदरूनी आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है उस दौर में से बस आगे बढ़ते रहने के लिए.
Why do we need spiritual strength?
और क्यों हमें आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत है?
So that we can reap. Are you listening right now?
ताकि हम फसल काट सके.
It is very important that you understand your harvest is dependent on your spiritual strength.
और बहुत ही मायने रखता है ये बात कि आपकी फसल जो है आपके अंदरूनी सामर्थ्य पर आपके आत्मिक सामर्थ्य पर टिकी हुई है.
How much can you sow in the midst of what you're going? Your prayer, your fasting, your service unto the Lord. You see, your harvest is dependent on that.
और जिस किसी दौर में से भी आप जा रहे हैं आप प्रार्थना करना आपका प्रभु की सेवा करना देखिए उपवास करना कितना आप कर सकते हैं ये आपके आत्मिक सामर्थ्य आपके अंदरूनी सामर्थ्य पर आपकी फसल का आना टिका हुआ है.
Now we come to the question that okay fine I understand that my harvest is dependent on spiritual strength so how do I build my spiritual strength and we're going to look at part 3 of today's message.
तो देखिए अब हम इस सवाल पर आते हैं कि चलो ठीक है हमारे अंदरूनी सामर्थ्य हमारे आत्मिक सामर्थ्य पर हमारी फसल जो है यह टिकी हुई है तो दरअसल मैं अंदरूनी सामर्थ्य अपने आत्मिक सामर्थ्य को मजबूत कैसे कर सकता हूं.
Very interesting, please follow me.
और बहुत ही दिलचस्प मेहरबानी बने रहिए.
Acts 20 and verse 32 right now.
और चलिए निकालेंगे संप्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 32वां वचन.
So now brethren,
तो अब भाइयों,
I commend you to God and to the word of his grace.
मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता
हूं. Which is able to build you up.
जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है
एंड गिव यू एन इनहेरिटेंस
और तुम्हें मिराज दे सकता है
अमंग ऑल दोज हु आर सैंक्टिफाइड
सब पवित्र किए गए लोगों में.
नोटिस इट सेज टू द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस. आई कमेंड यू टू द वर्ड ऑफ हिज ग्रेस.
देखिए वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता
हूं. दिस वर्ड इज एबल टू बिल्ड अस अप.
ये वचन जो है हमारी उन्नति कर सकता है
एंड सेकेंडली इट इज एबल टू गिव अस एन इनहेरिटेंस
और दूसरी बात जो है ये हमें मिराज दे सकता है.
Two things over there.
दो चीजें हैं.
The word of God is able to build us up.
परमेश्वर का वचन जो है यह सक्षम है हमें मजबूत बनाने के लिए.
And the second thing, it is able to give us an inheritance.
और दूसरी बात ये बताता है कि यह हमें मिराज दे सकता है.
An inheritance is something that is yours rightfully.
और मिराज कुछ ऐसा होता है जो दरअसल पूरे कानून तौर पर आप ही का होता
है. By the virtue of the shed blood of Jesus, there is an inheritance for you, and the word of God reveals this inheritance for you. Come on, somebody.
यीशु के बहाए हुए लहू के वजह से हम देखते हैं कि आपके लिए ऐसे मिराज को उपलब्ध कराया गया है और परमेश्वर का वचन इस मिराज को हमें दे सकता है.
Many people are not sure whether God wants to heal them or not.
देखिए बहुत सारे लोग इस बात के लिए पक्के नहीं होते कि परमेश्वर चंगा करेगा या नहीं.
You go in the word.
आप वचन में जाएं.
It clearly tells you inheritance that it is the will of God for you to be healed. Come on.
आप साफ तौर पे देख लेंगे ये आपकी मिराज है कि यीशु के घाव के द्वारा आपको चंगाई मिलना है.
So the word of God explains explains or rather reveals to us that what God has for us.
तो परमेश्वर का वचन जो है देखिए हम पर जाहिर कर देता है, दरअसल ये हम पर उजागर कर देता है जो परमेश्वर के वचन ने हमें दे रखा है.
So I encourage you, church, to get into the Word of God.
तो आपको हौसला बढ़ाते हुए कहते कलीसिया कि परमेश्वर के वचन में जाइएगा.
Why?
क्यों?
It will build your spiritual strength.
ये आपके अंदरूनी आपके आत्मिक सामर्थ्य को मजबूत बनाएगा.
It will build your spirit man.
ये आपके आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत बनाएगा.
You know, one translation puts it like this.
देखिए एक अनुवाद इस तरह से कहता है.
The word is spirit food.
वचन जो है ये आत्मा का आहार है.
You have protein shakes, you have what not, but what about your spirit?
और देखिए शरीर के लिए प्रोटीन शेक लेते हैं, दूसरी बहुत सारी चीजों का आप सेवन करते हैं, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है. चलिए, लेकिन आत्मा के लिए आप क्या ले रहे हैं?
You need to have spirit food for the spirit man.
जरूरी है कि आपके आत्मिक मनुष्यत्व के लिए आप आत्मा का आहार लें.
You begin your day not by reading the newspaper, you begin your day by meditating on the word of God.
आप अपने दिन की शुरुआत करें अखबार को पढ़ते हुए नहीं, आपको अपने दिन की शुरुआत करना है परमेश्वर के वचन को पढ़ के मनन करके.
You put something that is very powerful, that you put spirit food inside your spirit, and you see your spirit man will grow.
और देखिए कुछ जबरदस्त चीज जो है आपको अपने अंदर डालना है, आपको आत्मा का आहार अपने अंदर डालना है, और ऐसा करने से आपका आत्मिक मनुष्यत्व मजबूत होकर बढ़ेगा.
You know, I was reading of some celebrities. It's like in the morning they will not have any junk. They will have only superfoods. Are you listening right now?
और पासवान जी कुछ लोकप्रिय हस्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने इस तरह से लिखा है कि सुबह के समय जो होता है वो कुछ बेकार की चीजें खाते नहीं है, लेकिन जो ज्यादा पौष्टिक प्रदान करते हैं सेहतमंद खाने पीने की चीजें वही खाते हैं.
सुपर फूड्स
उन्हें वो नाम देते हैं, सुपर फूड.
एंड आई वॉज लाइक, मैन, वी हैव द बेस्ट सुपर फूड, द अल्टीमेट सुपर फूड, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड. सो यू बिगिन योर डे विद द अल्टीमेट स्पिरिट फूड. Is the word of God. Come on, can I have a good amen?
आहार देखिए जो देख सकते हैं वो तो परमेश्वर का वचन खुद है हमारे लिए. आप सुन रहे हैं?
It will build you up in ways you've never known before.
और देखिए इस तरह से ये आपको मजबूत बनाएगा जैसा आप बिल्कुल जानते ही नहीं.
Give yourself 21 days with this habit of reading the Bible early in the morning, as soon as you wake up, you know, brush your teeth or something, and just get into the word, and you will see, keep up with this habit. In 21 days, there will be a new version of you, 2.01. Come on.
और देखिए एक 21 दिनों का ऐसा एक लक्ष्य बनाए कि आप तड़के सुबह उठ के देखिए आप दांत घसेंगे और बाद में क्या करना है, आप सिर्फ बाइबल पढ़ना है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और 21 दिनों के आप पाएंगे कि आप बिल्कुल बदले हो गए होंगे.
It will reveal to you what is rightfully yours.
और देखिए ये आप पर जाहिर कर देगा कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक क्या चीजें आपकी हैं.
That's what Paul writes.
यही तो पौलुस लिखते हैं.
He says, I commend you to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance.
और वो इस तरह से लिखते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और तुम्हें मिराज दे सकता है.
Many Christians, they neglect the word of God.
बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं.
Maybe things outwardly looking fit and fine.
और देखिए भले बाहर से चीजें अच्छी खासी ठीक ठाक दिखती
हैं, but inwardly they are spiritually dry.
लेकिन अंदर से आत्मिक तौर पे वे बिल्कुल सूख चुके
हैं. It's because they have neglected the word of God.
ये इस वजह से क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज किया.
Are you listening to me right now? Go with me to 2 Corinthians.
चलिए निकालें इस समय दूसरा कुरिन्थियों.
And chapter 12.
उसके 12वें अध्याय में.
Verse 19. I'm reading from the Living Bible.
दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय उसके 19वें वचन में पढ़ेंगे और लिविंग बाइबल में से पढ़ेंगे.
Now Paul writes over here.
यहां पे प्रेरित पौलुस लिखते हैं.
I suppose you think I am saying all this to get back into your good graces.
और वो ऐसा लिखते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि मैं यह सब कुछ तुम्हें अच्छे गुणों में वापस लाने के लिए कह रहा हूं.
That isn't it at all.
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
I tell you with God listening, as I say it,
मैं तुमसे कहता हूं जैसा कि मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुन रहा है.
I have said this to help you.
मैंने यह तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है.
Dear friends,
प्यारे दोस्तों,
to build you up spiritually and not to help myself.
आपको आत्मिक रूप से मजबूत और विकसित करने के लिए और खुद की मदद करने के लिए नहीं.
Now notice, I'm saying all this. Now see, Paul is speaking right now.
देखिए यहाँ पे पौलुस बोल रहे हैं.
And notice the word, it says, I have said this to help you.
और देखिए वो कहते हैं यहाँ पर कि मैंने ये कहा है तुम्हारी मदद करने के लिए.
To build you up spiritually.
तुमको आत्मिक तौर पे मजबूत और विकसित बनाने के लिए.
All that apostle Paul was saying was to build them spiritually.
और जो कुछ भी यहाँ पे पौलुस कर रहे थे वो उनको आत्मिक तौर पे मजबूत बनाने के लिए कह रहे थे. और ये इनके लिए नहीं था.
All that apostle Paul was teaching them, was preaching them, was to build them up spiritually.
और जो कुछ भी प्रेरित पौलुस वहाँ पे देखे सिखा रहे थे या प्रचार कर रहे थे वो तो उन लोगों को मजबूत बनाने के लिए था आत्मिक तौर पे.
That is why it is important that you don't miss the live services.
और इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हमारे लाइव सभाओं से चूकेगा नहीं.
The word that is preached,
जो वचन प्रचार किया जाता है,
it's not for myself.
और देखिए वचन जो वो हमारे लिए नहीं होता,
but to build you spiritually.
लेकिन आप लोगों को आत्मिक तौर पे मजबूत बनाने के लिए.
Somebody needs to shout a big hallelujah.
चलिए कोई तो चिल्लाए जोर से hallelujah.
In my early days,
पासवान जी के शुरुआती दिनों में,
and I still do that.
और अभी भी करते हैं.
You know, I listen to the men of God from whom I can learn from.
पासवान जी परमेश्वर के जनों से सुना करते थे, उनके संदेशों को सुनते थे जिससे सीख सकें.
Yes, I'm seriously telling you.
जी हाँ, गंभीरता से कह रहे हैं.
Even when sometimes I'm having my breakfast or something, I'll listen to something word of God by a wonderful man of God or something like that.
और जब भी ऐसा समय मिलता है, जब नाश्ता कर रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर के कुछ अद्भुत जनों के जो संदेश जो है पासवान जी सुन रहे होते हैं.
See, this is why the word of God clearly says.
और इसी वजह से देखिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर पे बताता है.
I'm saying this all to build you up spiritually. You need to even hear the word of God.
और मैं ये सब तुमसे कह रहा, तुम्हें आत्मिक तौर पे मजबूत और विकसित बनाने के लिए.
Even after the service is over,
और सभा खत्म होने के बाद,
must listen to the word.
आपको वचन को सुनना चाहिए.
Like when there is no live service, listen to the word of God.
और जैसे कि अगर कोई लाइव सभा नहीं होती है, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनिएगा.
You know, I encourage you, get one of my messages from the YouTube channel, listen to it, and you know you can forward it to somebody. Even they would grow in the word of God. It will build you up spiritually.
और देखिए आपको हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, पासवान जी के YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां पे जो शिक्षण मिलते हैं, आप रोज उन्हें सुनिए और किसी और को भी आप भेजिए सुनने के लिए. देखिए आप आत्मिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे.
This is how you build your spirit man.
इस तरीके से देखिए आप अपने आत्मिक मनुष्यत्व को मजबूत बनाते हैं.
Sometimes I'm flying across like it's 3 hours or 2.5 hours or 3 hours or something. I'll just download some message and just listen to it and just be blessed, you know, because it's just going in my spirit. It's just going in my spirit.
जब पासवान जी कहीं दूर देश में जा रहे होते, 2-3 घंटे का जब सफर होता है, पासवान जी कुछ संदेशों को डाउनलोड कर लेते और लगातार उनको सुनते रहते अपनी आत्मा में वचनों को डालते रहते हैं.
When things get into your spirit.
और देखिए इसी तरीके जब चीजें आपकी आत्मा में चली जाती
है, when the word gets into your spirit,
जब वचन आपकी आत्मा में जाता है,
see the enemy will never allow the word to get into your spirit.
देखिए शत्रु कभी इजाजत नहीं देगा कि वचन सीधे आपकी आत्मा में जाए.
Because he knows once the word gets into your spirit man,
क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार वचन आपके आत्मिक मनुष्यत्व में चला जाए,
it will start producing,
तो ये फल उत्पन्न करने लगेगा.
Please listen very carefully.
बड़े ध्यान से सुनिए.
You see, Jesus spoke about the parable of the sower.
हम देखते हैं यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया.
The seed didn't fall into the spirit man's side. It fell on the wayside, it fell on the rocky soil, it fell on the thorns, but the moment it fell on the good ground, that's the spirit man, it started producing. Are you with me right now?
हम देखते हैं कि बीज जो था वहां पर मार्ग के किनारे गिरा, झाड़ियों के बीच में गिरा, फिर उसके बाद हम देखते हैं जिस फल वो बीज जो है अच्छी जमीन पर गिरा, तो वहां पर हम देखते हैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करने लग गया.
Keep on feeding your spirit man.
अपने आत्मिक मनुष्यत्व को लगातार वचन का आहार देते रहे.
Please listen, at the risk of repeating myself, once the word gets into the spirit, my friend, there is no stopping. There'll be a chain reaction and it will produce something. That's why God's word says, my word shall not return empty. Come on, somebody say hallelujah.
जैसे दोहरा रहे, लेकिन आपको समझाना चाहते हैं कि जब वचन एक बार जब आपकी आत्मा में चला जाता है, तो फिर वहां पर हम देखते हैं वो नतीजों परिणामों को उत्पन्न करने लग जाता है. इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसका वचन आता है तो वो यूं ही खाली व्यर्थ नहीं लौटता.
The third thing now.
तीसरी चीज,
how you can build yourself spiritually.
आप अपने आप को आत्मिक तौर पे कैसे मजबूत बना सकते
हैं? Through the word.
वचन के जरिए.
I want to show you some wonderful piece of insight over there.
और देखिए कुछ अद्भुत सी अंतर्दृष्टि आपको दिखाना चाहिए.
Go to Genesis 12 and verse 6. Come on, hurry up now.
चलिए जल्दी से निकालेंगे उत्पत्ति के 12वें अध्याय उसका 6वां वचन.
Abram passed through the land to the place of Shechem as far as the terebinth tree of Moreh, and the Canaanites were there in the land.
उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा. उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे.
I want you to understand this word Shechem.
और चाहते हैं कि गौर करें आप इस शब्द को शकेम.
Now Shechem in Hebrew means shoulder.
और देखिए इब्रानी भाषा में शकेम का मतलब है कंधा.
It indicative of strength, shoulder.
देखिए ये सामर्थ्य, ये ताकत का सूचक है.
The word Shechem, it means shoulder, indicative of strength.
और देखिए शब्द शकेम जो है इब्रानी भाषा में जो है इसका मतलब है कंधा, जो कि सामर्थ्य, ताकत का प्रतीक है.
The next word we see is more.
दूसरा शब्द जो हम पाते हैं वह है मोरे.
In Hebrew it means teacher.
और इसका मतलब इब्रानी भाषा में है शिक्षक.
A teacher gives instruction.
एक शिक्षक जो होता है वह निर्देश देता है.
Now please understand this right now.
बड़े ध्यान से सुनिए ये.
If I put it together,
अगर दोनों मिला दिया जाए,
it means that your strength will come from your instruction. Come on, somebody.
इसका मतलब ये है कि आपकी ताकत जो है वह आपके निर्देश से आती है.
Abraham was passing though the Canaanites were there.
और हालांकि देखिए कनानी लोग वहां पर थे.
Though the opposition was there.
वहां पर विरोध थे.
Abraham's strength came came from his instruction. Hallelujah. Following instruction.
लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम की ताकत जो है उसके निर्देश के पास से आई.
No matter what opposition you are facing.
इससे फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार के विरोधों का आप सामना कर रहे हैं.
Your strength will come from obeying the instruction. Come on, somebody.
आपकी सामर्थ जो है उस निर्देश का पालन करने के जरिए आएगी.
Come on, are you following me right now?
आपको समझ में आ रहा है?
What do you mean, Pastor?
पास्टर मुझे आपके कहने का मतलब क्या
है? As we are going through this world.
जैसे हम इस दुनिया से गुजरते हैं.
The Canaanites are there.
कनानी लोग हैं.
But you see, we are going from Shechem. We are going to Moreh. You see, our strength is in following the instruction.
देखिए हम शकेम से होते हुए मोरे से होते हुए गुजर रहे हैं. देखिए हमारी ताकत जो है ये तो निर्देश का पालन करने में है.
You know, when you read the word.
देखिए जब आप वचन को पढ़ते हैं.
Follow the instructions that God has given you.
परमेश्वर अपने वचनों के जरिए जो आपको निर्देश देता है उसका पालन करें.
It will build you up spiritually.
या आपको आत्मिक तौर पे मजबूत बनाएगा.
It will bring changes in your life.
या आपकी जिंदगी में बदलावट को लाएगा.
Are you following me right now?
आपको समझ में आ रहा है?
When you do the word.
देखिए जब आप वचन को करते हैं.
It produces a strength that is amazing.
तो ये आपके अंदर ऐसी ताकत और शक्ति को उत्पन्न करती है जो कि बहुत ही जबरदस्त है.
You see in John 9,
आप देखते हैं यूहन्ना के 9वें अध्याय में,
there was this blind man.
वहाँ पर एक अंधे व्यक्ति को देखते
हैं. Jesus touched him, put clay on his eyes, and everything was done.
और देखिए यीशु ने उसकी आंखों को छुआ, उसकी आंखों पर मिट्टी का लेप लगाया और सब कुछ कर दिया गया.
But then something, please listen.
लेकिन फिर उसके बाद ध्यान से सुनिए.
Jesus tells him,
यीशु उससे कहता है,
I've touched you.
मैंने तुम्हें छुआ है.
I've put the clay on you.
मैंने मिट्टी का लेप तुम्हारे आंखों पर लगाया.
But now go to Siloam.
लेकिन अब तुम शिलोह का कुंड जाओ.
Hey, are you listening right now?
सुनिए ध्यान से.
Siloam means sent.
और वो शिलोह का जो शब्द जो है इसका मतलब है भेजा हुआ.
You sent, always sent goes with some instruction.
और देखिए हमेशा आप भेजते हैं तो कुछ ना कुछ निर्देश के साथ ही भेजा जाता है.
Just send somebody से बोले जा.
आप किसी को बस यूं ही नहीं भेजते चलो जाओ.
No. You give that person some instruction.
आप उस व्यक्ति को कुछ निर्देश देते हैं.
The pool of Siloam meaning the word meaning sent. You send something. Whenever you send, there is always some instruction. Come on, hello, are you there?
शिलोह का कुंड देखिए शिलोह यानी भेजा जाना. जब कभी आप किसी को कुछ भेजते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ निर्देश देते हैं.
The blind man had already met the living word.
हम देखते हैं उस अंधे व्यक्ति ने तो जीवित वचन से पहले मुलाकात कर लिया था.
The blind man was already touched by the word.
उस अंधे व्यक्ति को तो वचन के जरिए पहले छू लिया गया था.
Are you listening right now?
आप सुन रहे हैं?
Jesus touched him. The living word. Jesus is the word. So Jesus touched him, right?
देखिए यीशु ने उसे छू लिया. यीशु तो जीवित वचन है तो यीशु ने उसे छू लिया था ना?
But now,
लेकिन अब,
still there was no change in his life.
फिर भी उसके जीवन में कोई बदलावट नहीं था.
Please understand this.
सुनिए ध्यान से.
This is the third level.
यह है तीसरा स्तर.
Where you take the word,
जहां आप वचन को लेते हैं,
and you do the word.
और वचन को आप करते हैं.
At that time,
उस समय पर,
bang, something will go inside of you. It'll just spark up.
और कुछ तो आपके अंदर आएगा, चमक उठेगा.
This man would have remained blind all his life hadn't he obeyed the instruction of the word. His strength came from obeying the instruction. He's listen to me. He Shechem to Moreh. Come on, his Shechem, his strength came from obeying the instruction. Moreh, are you with me right now?
देखिए अगर इस अंधे व्यक्ति ने उस वचन के निर्देश का पालन नहीं किया होता तो अपनी जिंदगी भर ही वो अंधा का अंधा ही बना रहता. लेकिन हम देखते हैं
yes.
कि उसने वचन का जो निर्देश उसको मिला उसका उसने पालन किया. यानी शकेम से वो मोरे की तरफ गया, आगे वो बढ़ता गया और उसने उसका पालन किया.
Many Christians today are searching for a new teaching.
देखिए आज बहुत सारे मसीह लोग नई नई शिक्षा की खोज में रहते हैं.
They want the teaching to tickle their ears.
और वो चाहते हैं ऐसे शिक्षा जो उनके कानों में खुजली उत्पन्न करे.
And sometimes the fault lies with us preachers also.
और कभी-कभी देखिए दोष जो है हम प्रचारकों पर भी आता है.
We are trying to find exotic teachings to impress people.
हम देखिए ऐसे शिक्षण ऐसा पाना चाहते हैं जो कि लोगों को एकदम उत्तेजित करे.
The aliens are coming.
और जो aliens हुए वे आ रहे हैं.
Man, today's teaching, aliens are coming.
अरे आज का शिक्षण का विषय जो है वो है एलियंस लोग आ रहे हैं.
Everybody was like, okay, I want to listen to that.
और फिर सभी लोग उत्तेजित होकर कहेंगे ठीक है आज मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा. आप सुन रहे हैं?
Aliens. And everybody is trying to now. How can that teaching change your life?
लेकिन कैसे ये शिक्षण जो आपकी जिंदगी बदल सकती है?
Are you listening right now? How can it change your life? How can it? I mean, come on.
चलिए बताएं कैसे जिंदगी कैसे बदल सकते हैं.
But it doesn't change anything in my life.
और देखिए भले ही रोमांचित लग रहा है लेकिन मेरी जिंदगी में से कुछ बदलावट तो नहीं हो रहा.
Many people tell me.
बहुत सारे लोग कहते हैं.
Why don't you preach about the Antichrist?
क्यों नहीं तुम मसीह के विरोधी के बारे में प्रचार करो?
I have already preached many times.
कई बार पास बंजर पहले प्रचार कर दिए.
Please check it before you speak.
और बोलने से पहले आप जरा
बात करें. You should speak about the end times.
पास बंजर आप अंत के समय के बारे में बात करें.
Listen, I have spoken so much on the end times.
अंतिम समय के बारे में कई सारी शिक्षण पास बंजर दे रखे हैं.
Please understand this.
समझिए इसे.
There are teachings that are needed. To build you up. Come on, help me.
शिक्षण है जिनकी सख्त जरूरत है आपको मजबूत बनाने के.
That can help you to grow in your relationship with Christ. Can I have an amen, somebody?
ऐसे शिक्षण है जो आपकी मदद कर सकते हैं मसीह के साथ आपका रिश्ता उसमें मजबूत और बढ़ने के लिए.
Now watch this. What happened to Abraham?
अब सुनिए ध्यान से कि अब्राहम के साथ.
He was passing by from Shechem to Moreh.
और देखिए वो तो बस गुजरता जा रहा था शकेम से होते हुए मोरे को.
His strength came from the instruction.
और हम देखते हैं कि उसकी ताकत जो है निर्देश का पालन करने से आई.
When you start doing that,
देखिए जब आप ये करना शुरू करते हैं,
you encounter the the presence of God like never before.
परमेश्वर की उपस्थिति से आपकी ऐसी मुठभेड़ होगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ.
Listen to me carefully.
सुनिए बड़े ध्यान से.
You know, in my early days,
पासमान जी की शुरुआती
दिनों में, there was no internet.
इंटरनेट की कोई सेवकाई नहीं थी.
Or maybe there was and I did not know. I'm talking about 1995.
1995
के somebody should give me books of Papa Morris Cerullo.
और किसी ने पासमान जी को एक पापा मॉरिस सेरुलो जी की पुस्तक दी.
Somebody gave me books of Man of God Derek Prince.
और किसी ने परमेश्वर के जन डेरिक प्रिंस जी की पुस्तक
दी. And I would read that.
और ये लेके पढ़ते.
I read that book by Reverend Derek Prince, Changing History to Fasting and Prayer.
और रेवरेंड डेरिक प्रिंस जी की जो पुस्तक जो है इतिहास को बदलना उपवास और प्रार्थना के जरिए.
And I said, really?
सचमुच?
Can you change history to fasting and prayer?
क्या तुम उपवास और प्रार्थना के जरिए इतिहास बदल सकते हो?
I said, I need to do that for my life.
उन्होंने कहा मुझे मेरी जिंदगी के लिए करने की जरूरत है.
I don't want history to repeat in my life.
मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में मेरा वही इतिहास दोहराता जाता
रहे. And I went through the book.
और फिर उस
I would mark all the scriptures, read those scriptures, meditate on the scriptures.
उन वचनों को पढ़ते, उनको रेखांकित करते, उन सभी वचनों पर मनन करते रहते.
And Reverend Derek Prince says, when he in his early life he would fast and pray regularly every week.
और Reverend Derek Prince जैसा कहते थे कि अपने शुरुआती दिनों में वे हर हफ्ते में उपवास और प्रार्थना किया करते थे.
And I was like, I need to do that.
और ये कहने लगे अरे मुझे भी करना चाहिए फिर.
I will see the same results this man of God seeing.
परमेश्वर के जन ये जो परिणाम देख रहे हैं मैं भी वो देख पाऊंगा.
Are you listening right now? I started doing that.
और इन्होंने वो करना शुरू किया.
Are you listening right now? It was from the word.
ये वचन में से
था. It was from a teaching that I had received.
और ये वो शिक्षण जो इन्होंने पाया उसी में से था.
I read about Papa Morris Cerullo.
पापा मॉरिस सेरुलो जी के बारे में पढ़े.
He would often speak about miracles and producing the proof. And I was like, yeah, what this man is saying is right.
और वे अक्सर इस तरह से आश्चर्यम के बारे में और सबूत को पेश करना इस बारे में वो हमेशा सिखाते रहते थे.
And he would, you know, he had a teaching called proof producers.
और देखिए उनका कुछ शिक्षण ऐसा कि पुख्ता सबूत पेश करना.
He said, when you preach the word, there should be miracles. There should be something happening after you preach the word.
और वो ऐसा कहते हैं जब तुम वचन का प्रचार करते हो उसके बाद जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए, आशकम होना चाहिए.
I said, this is right.
इन्होंने कहा ये सही है.
He says, whenever Jesus preached, he gave many scriptures. It says the disciples after they preached, God confirmed the word that they preached, and it brought glory to the Lord, and many were added to the kingdom, and things like that. And I was like studying the word, and I said, yes. Every time I preach, I want God to do something. So after my preaching, I would have something, you know, praying for the sick, praying for something. You see. It built me up. My friend, I want to encourage you. It can do the same thing to you. Come on, somebody say hallelujah.
उन्होंने कई सारे ऐसे वचन भी दिए कि चेलों ने जाके प्रचार किया, प्रभु यीशु उनके साथ में काम करता रहा और आश्चर्यकर्म करके वचन को सिद्ध करता रहा. और फिर इन्होंने भी कहा कि अब मैं भी जब भी प्रचार करूंगा उसके बाद में प्रार्थना करूंगा, फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करते, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते. और इस तरह से इनका विश्वास मजबूत होता गया, इनका आत्मिक अंदरूनी भीतरी समझ वो नया होती चली गई, मजबूत होती चली.
I would listen to men of God like Prophet Ezekiah Francis.
परमेश्वर के जब भविष्यवक्ता एज़ेकिया फ्रांसिस जी के संदेशों को
सुनते. I read books about man of God Reverend Dave Robertson.
परमेश्वर के जन Reverend Dave Robertson जी की पुस्तक लेके पढ़ते
हैं. On tongues.
अन्य भाषा पर.
I said, man, this is awesome.
और कहने लगे अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त है.
I started thirsting for it. I used to read the scriptures. I started thirsting for those things.
और वचन के लिए, उन चीजों के लिए एकदम भूखे और प्यासे बेकरार होते चले गए.
I started doing.
और फिर करना इन्होंने शुरू किया.
I started doing.
और इन्होंने करना शुरू किया.
Are you listening right now?
आप सुन रहे हैं इस वक्त?
I listened to a teaching man of God, Sadhu Selvaraj.
परमेश्वर के जन साधु सेल्वराज जी के.
He said, I took Ephesians 1 and started praying for my spiritual eyes to open.
और इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में जो प्रार्थना है उसे लेकर प्रार्थना करने लगे कि इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए.
I would do that for months.
और महीनों महीनों करते रहते.
Every time, Lord, open my spiritual eyes.
हर बार, हर बार प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे.
See, this is what built me up spiritually.
देखिए इसी चीजों ने देखिए पासमान जी को आत्मिक तौर पे मजबूत बनाया.
I want to encourage you, church.
और कलीसिया देखिए आपका हौसला बढ़ाते
हैं. The word of God is not only to preach, and the word of God is not only to impress or tickle the ears of God's people. No.
देखिए परमेश्वर का वचन सिर्फ प्रचार करने के लिए या फिर परमेश्वर के लोगों को उत्तेजित करने के लिए या उनके कानों में खुजली करने के लिए ऐसा नहीं है.
God didn't write the word to give us a career. No.
देखिए परमेश्वर ने वचन इसलिए नहीं लिखा ताकि हमको करियर दिया जाए.
This is the stuff that you can take it and build yourself up.
ये वो चीजें हैं जिनको आप लेकर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं.
Notice what happened to Abraham.
गौर करें.
Verse 6, he was moving from Shechem to Moreh. His strength would come from his instruction. And read verse 12. This will really bless you.
और देखिए छठे वचन में देखें वो शकेम से मोरे की ओर बढ़ता गया. देखिए उसकी सामर्थ, उसकी ताकत वहां से निर्देश का पालन करने से आई. फिर देखिए
Genesis 12 verse 7.
उत्पत्ति का 12वां अध्याय 7वां वचन.
He says when his strength came from his instruction, then the Lord appeared to Abram.
तब कब देखिए जब उसकी ताकत जो उसके निर्देश का पालन करने से आई तब प्रभु ने अब्राम को दर्शन दिया.
Please understand this.
और मेरे बारे में समझिए.
You know many people cannot handle the glory. That's why God will build you up first.
देखिए बहुत सारे लोग जब महिमा को जो है संभाल नहीं पाते इसलिए परमेश्वर को जरूरी पड़ता है पहले कि आपको अंदर से मजबूत बनाए.
So when you're built up spiritually, God will give you experiences.
तो जब आप आत्मिक तौर पे मजबूत बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको कई सारे अनुभव देगा.
God will start using you at that time.
परमेश्वर उस समय पर देखिए आपका इस्तेमाल करने लगेगा.
I encourage you from today onwards.
आपको हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं आज के दिन से आज एक फैसला लें.
The first thing in the morning, you got to go for the word.
कि सुबह सबसे पहले आप वचन को पढ़ेंगे.
Maybe during your lunch time in office, take time out, just read something of the word. It will build yourself. You will build yourself spiritually.
और देखिए दोपहर के खाने का समय जब होता है बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं बहुत सारे लोग अभी घर से काम कर रहे हैं लेकिन जब आपको समय मिलता है तो देखिए कुछ भाग लेके वचन का आप पढ़िएगा. देखिए ये आपको आत्मिक तौर पे मजबूत बनाएगा.
You will tell me, Pastor, I did this. It sounds very simple. You know, somebody said the simple things are actually the deepest things.
और देखिए किसी ने ऐसा कहा कि जो सरल सी चीजें होती है ना दरअसल वे गहरी चीजें होती
है. You agree with me, right?
आप सहमत
हैं. The simple stuff is always the most difficult stuff.
और सरल सरल जो चीजें होती है ना अक्सर बहुत ही मुश्किल चीज हो जाती
है. You know, we want something very complicated.
और देखिए हमें तो कुछ ऐसा चाहिए होता है जो बहुत ही पेचीदा और जटिल है.
But the Lord is very simple, church.
लेकिन प्रभु तो बहुत ही सरल है.
Let me finish this with 1 John chapter 2. It'll really bless you. Watch this.
चलिए देखें इसमें पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय.
Verse 14. Now John writes over here.
यहाँ पर देखिए प्रेरित
यूहन्ना. I have written to you, young men. Why? Because you are strong.
हे नौजवान लोगों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम बलवंत हो.
How did the young men become strong?
कैसे जवान लोग ताकतवर बने?
Because the word of God abides in you.
क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है.
Apostle John is writing through the Holy Spirit. I have written to you, young men, because you are strong.
देखिए प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर पवित्र आत्मा के जरिए ऐसा लिखते हैं जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम बलवंत और ताकतवर हो.
He's not just talking about physical strength.
और देखिए ये सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं
कह रहा. He says the word of God abides in you.
आगे लिखा है परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है.
And notice the result of that.
और गौर करें इसका नतीजा क्या है.
He says, because the word of God abides in you,
और क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है,
you have overcome the wicked one.
तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है.
Oh, come on, somebody, hallelujah.
चलिए कोई तो कहे हालेलुया.
Please listen to me carefully.
सुनिए बड़े ध्यान से.
When the word of God gets inside your spirit, it starts abiding in you.
देखिए जब परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में जाने लगता है, तो ये आपके अंदर बने रहने लग जाता है.
You will overcome the wicked one.
उसके बाद आप दुष्ट पर जय पाएंगे.
Oh, somebody needs that. Somebody say hallelujah.
किसी को इसकी जरूरत है, बोले हालेलुया.
Are you falling in temptation again and again?
क्या आप बार बार एक ही प्रकार की परीक्षा में गिरते रहते हैं?
Don't condemn yourself.
अपनी निंदा मत करिए.
Build yourself spiritually.
अपने आप को आत्मिक तौर पे मजबूत बनाएं.
Let the word of God abide in you.
होने दो कि परमेश्वर का वचन आप में बना रहे.
Guaranteed you will overcome the wicked one.
और पक्का है कि आप देखिए उस दुष्ट पर जय पाएंगे.
Are you going through addictions?
क्या आप व्यसनों के दौर से जा रहे
हैं? Let the word of God abide in you.
होने दो परमेश्वर का वचन आप में बना रहे.
You will overcome that addiction.
आप उस व्यसन पर जय पाएंगे.
Come on, somebody needs to lift your hand and say, I receive this word right now.
अपने हाथ उठा रखा है, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं.
Hallelujah.
Hey, hallelujah.
Many years ago, one wonderful man of God from South India shared this story with me.
कई साल पहले की बात दक्षिण भारत से जो है उन्होंने पसमान जी से कहानी को बताया.
He said that there was this sick person who was, you know, sick, lying down on the bed on the floor.
और वे ऐसा बता रहे थे कि एक बीमार व्यक्ति फर्श पर जमीन पर ऐसा लेटा पड़ा हुआ था.
And he's alive. He's not dead.
देखिए वो मरा हुआ नहीं था, जिंदा था.
But he is very sick.
लेकिन बहुत ही बीमार था.
And at the side of him,
और उनके बगल में ही,
there is a stick.
एक छड़ी, एक लाठी थी.
Please listen to this. The nice heavy stick.
एक अच्छी सी लाठी जैसी.
And the other side, he sees a cobra, snake coming towards him.
और दूसरी ओर देखता है कि एक कोबरा जो है, एक सांप उसकी ओर आ रहा है.
A huge cobra coming towards him.
एक बड़ा सा कोबरा सांप जो उसके पास आ रहा है.
Now look at this.
अब देखिए.
He looks at the stick.
वो लकड़ी को देखता है.
He looks at the cobra.
उस कोबरा को देखता है.
He looks at the stick.
उस लकड़ी को देखता है.
He looks at the cobra.
और फिर वो सांप कोबरा को देखता है.
He's trying to move.
वो हिलने की कोशिश कर रहा है.
But he cannot move.
लेकिन नहीं कर पा.
Unfortunately,
अफसोस.
The cobra comes and bites the guy dies.
अफसोस ऐसा होता है कि सांप आकर, वो कोबरा आकर उस बीमार को डस लेता है और वो बीमार मर जाता है.
My question to you,
मेरा सवाल,
why did this fellow not able to take the stick and beat the cobra? The stick was already available. Come on with me. Come on.
क्यों वो बीमार व्यक्ति उस लाठी को उठाकर उस कोबरा को नहीं मार सका? वो लाठी तो पहले उसके सामने उपलब्ध थी.
He was weak.
वो कमजोर था.
You see, many believers, many Christians.
आप देखते बहुत सारे मसीह, बहुत सारे विश्वासी.
God has already given us the resources.
परमेश्वर ने पहले ही उनको सारे संसाधन दे रखा है.
To overcome the devil.
शैतान पर जय पाने के लिए,
overcome the wicked one,
दुष्ट पर जय पाने के लिए,
but because they are not built themselves spiritually,
लेकिन उन्होंने अपने आप को आत्मिक तौर पे मजबूत नहीं किया,
they cannot utilize the resources that God has provided for us.
और इसी वजह से देखिए जो संसाधन परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध करा के रखा है हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे.
Zacchaeus was short. He wanted to see Jesus. Already God had prepared a tree for him.
हम देखते हैं जक्कई जो कि नाटा था और वो यीशु को देखना चाहता था, तो हम देखते पहले से ही परमेश्वर ने उसके लिए वृक्ष तैयार करके रखा था.
All that Zacchaeus had to do was somehow climb the tree.
जक्कई को तो बस इतना ही करना था कि किसी न किसी प्रकार से उस पेड़ पर चढ़ जाए.
What if he was not physically fit?
क्या होता अगर वो शारीरिक तौर पे तंदुरुस्त या योग्य नहीं होता?
Forget it. I can't climb the tree now.
Oh, चलो भूल जाओ, मैं नहीं चढ़ सकता.
The tree is there.
पेड़ था वहाँ.
Climb it and see what you have to see.
देखे बस चढ़े और देखे जो आपको देखना है.
Dear child of God,
परमेश्वर की प्यारी
संतान, I didn't come here to condemn you. I didn't come here to put you down. No.
यहाँ पर हम आपकी निंदा करने या आपको नीचे डालने नहीं आए हैं.
I came to build you up.
यहाँ हम आए हैं आपको मजबूत बनाने के लिए.
Listen to me.
सुनिए ध्यान से.
You are saying things have not happened in my life.
आप ऐसा कह रहे हैं कि चीजें मेरी जिंदगी में नहीं हो रही.
Now you know why it has not happened.
अब आपको समझ आ रहा है क्यों नहीं हो रहा?
The things are already prepared. Your life partner, your house, your job, everything, your ministry, everything is there. Just build yourself up spiritually. You will be able to access those resources in Jesus' name.
और देखिए चीजें आपके लिए पहले ही उपलब्ध करा के रखी गई हैं. जीवन साथी हो या फिर नौकरी हो, जो भी चीज को आप पाना चाह रहे हैं, देखिए वो सब कुछ पहले तैयार करके रखी गई है. लेकिन जरूरी है कि आप अपने आप को मजबूत बनाए आत्मिक तौर पे और बस उन चीजों तक पहुंच जाए.
Today,
आज
let's get into the word.
चलिए वचन में जाएं.
Pastor, is it that simple?
Pastor जी क्या इतना आसान है?
Of course.
यकीनन.
You see, when a child is small,
देखिए जब बच्चा छोटा होता है,
mother will smash everything and give the child.
और देखिए माँ सब कुछ तरल बना के बच्चे को खिलाती
है. That's how we are.
ऐसे ही तो है.
Jesus made everything easy.
यीशु ने सब कुछ हमारे लिए कर.
Glory be to Jesus.
यीशु को महिमा मिले.
I want to hear your testimonies.
और आपकी गवाहियां सुनना चाहता
हूं. You will come back with a testimony.
आप अपने गवाहियों के साथ आएंगे.
Don't cry.
रोइए मत.
Get into the word.
वचन में जाएं.
You will come with not one testimony. Mark my words. You will come with हजार testimonies. You will come may even more actually.
और देखिए सिर्फ एक ही नहीं, हजारों की तादाद में गवाहियों के साथ आप आने वाले हैं, उससे भी ज्यादा.
All the glory belongs to Jesus.
सारी महिमा यीशु को.
Today say, Lord.
आज कहें प्रभु.
Teach me your word.
मुझे आपका वचन सिखाइए.
Come on, lift your hands and pray.
चलिए अपने हाथों पर
उठाइए. I speak this as a man of God.
परमेश्वर के जन के रूप में कहते हैं.
I never used to say like that.
पहले कभी ऐसा नहीं कहते.
But something has happened.
नहीं कुछ तो हुआ.
Miracles will happen today.
आश्चर्य होने लगेगा.
The Holy Spirit is flowing right now.
पवित्र आत्मा बह रहा है इस वक्त.
In the name of Jesus.
यीशु के नाम में.
Hallelujah.